हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय एक श्लोक क्रमांक 31। न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। तो यहां हम देख रहे हैं कि अर्जुन श्रेय के बारे में सोच रहे हैं। श्रेय और प्रेयस में अंतर होता है। श्रेय का अर्थ होता है हम भविष्य के बारे में हमारे लिए क्या अच्छा है उसके अनुरूप कार्य करें, और प्रेयस का अर्थ ये होता है कि इस समय हमारी इंद्रिय तृप्ति को क्या अच्छा लगता है, हमारे हमें क्या भोग प्राप्त हो रहे हैं उसके लिए अनुसार या उसके अनुरूप हम कार्य करें। जैसे बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि केवल वो पूरा खेलते ही रहें, जीवन भर खेलते रहें, और उससे उनका जो आगे का भविष्य है वो फिर वो उज्ज्वल नहीं होगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि स्वजनों का वध करने से मुझे पाप लगेगा, और मान लीजिए पाप करके व्यक्ति आर्ग्यूमेंट करे कि भाई चलो मैं राज्य तो प्राप्त होगा, तो कह रहे नहीं, इस राज्य को सुख भोगने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं इस प्रकार की विजय प्राप्त करके जिसमें मैं अपने ही स्वजनों को मार दूं, ऐसे राज्य को प्राप्त करके मैं क्या सुख प्राप्त करूंगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जगत में हम सुख प्राप्त करते हैं एक दूसरे से संबंध स्थापित करके, जीवित लोगों से, मृत वस्तुओं से हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को अर्जुन समझते हैं और इसी कारण कह रहे हैं कि जिन लोगों से मैं प्रेम करता हूँ अगर उनका ही मैं वध कर देता हूँ तो फिर जीवन का क्या उद्देश्य रह जाएगा। इस कारण से मैं युद्ध करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं देखता, और स्वजनों का वध करना तो बहुत बड़ा पाप है। दूसरों का बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति का वध करना, जो स्वजन ना भी हो वो भी बहुत बड़ा पाप है। तो अगर स्वजन के हम वध करेंगे तो कितना बड़ा पाप हमारे सर पर चढ़ जाएगा। तात्पर्य यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। एक तो बात यह है कि व्यक्ति नहीं जानता है कि भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करके ही व्यक्ति इस जगत में सुख इस जगत में और परलोक में सुखी रह सकता है। जिस प्रकार के पेड़ के पेट में दाना देने मात्र से ही हम इंद्रियां को संतुष्ट कर सकते हैं, तो ये तो बात है ही, लेकिन साथ ही साथ व्यक्ति ये भी भूल जा रहा है कि इस जगत में भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति को अपने धर्म का आचरण करना पड़ता है, तभी उसको सुख प्राप्त होता है, कोई पुण्य होता है। धर्म के जब हम धर्म का आचरण करते हैं तो उसे पुण्य प्राप्त होता है और उसी से भौतिक सुख भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अर्जुन भौतिक आसक्ति के कारण इस समय अपने धर्म को भूल रहे हैं कि उनका क्षत्रिय का धर्म है, क्या उनको लाभ प्राप्त होगा। एक और गहरी बात इसमें है कि भगवान विष्णु से जो चार प्रकार के संबंध जीवात्मा स्थापित कर सकता है भगवान श्री कृष्ण से, तब जीवात्मा को सच्चा सुख प्राप्त होता है, और इस कारण से भूल इस बात को भूल जाने के कारण आत्मा अनर्थों से ग्रसित हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से। भगवान से अपने संबंध की स्मृति ही हमारे सारे दुखों का कारण है, और प्रभुपाद इस बात को भूल रहे हैं, और इसी के कारण देहात्म बुद्धि जनित हो जाती है। तो एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है, अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें। अर्जुन के हृदय में सहज करुणा है, इसके बारे में हमने पिछले श्लोकों में चर्चा किया था कि जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे जैसे उनका हृदय शुद्ध हो जाता है तो सभी जीवात्मा उनको प्रिय लगने लगते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन का यही गुण प्रकट हो रहा है। वो ये केवल यही नहीं सोच रहे कि हमारे शत्रु मारे जाएंगे, वो ये भी सोच रहे हैं कि मेरे भोग की लालसा के लिए इतने सारे सैनिक हमारे पक्ष में, क्षमा कीजिएगा, हमारे ही पक्ष नहीं मारे जा रहा है और विपक्ष के लोग भी मारे जाएंगे। तो फिर संबंधियों के प्रति उनकी कितनी करुणा होगी तो हम सोच ही सकते हैं। वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, ये एक अच्छी बात है कि जब कोई व्यक्ति को भूख न लगे और उससे बोला जाए कि भाई तुम खाना बनाओ, तो वो निश्चित रूप से नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि खाना व्यक्ति तब बनाता है जब उसको भूख लगती है। या मान लीजिए किसी व्यक्ति को खाने के लिए भूख ना हो और उसको होटल में लेके जाए, तो कहेगा मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है। ये चीज़ अपने जीवन में भी व्यक्ति अनुभव करता है। प्रायः जब भक्ति का प्रचार हम लोग करते हैं और लोगों को बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, तो वो लोग कहते हैं हमें करने की ज़रूरत क्या है। इसीलिए पहले भगवान की भक्ति करने से पहले व्यक्ति को जगत की असारता, जगत की दुखमयता के बारे में समझना बहुत आवश्यक है। जब तक व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि वो जगत में दुखी है, कोई मोटिवेशन नहीं होगा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का, एटलीस्ट शुरुआत में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्यक्ति समझे कि वो बहुत बड़ी परेशानी में है। श्रील प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि मान लीजिए किसी के शरीर में कष्ट है, तो व्यक्ति का मन ठीक है तो वो समझ पाता है कि मेरे को शरीर में कष्ट है, और इसके द्वारा फिर वो डॉक्टर के पास खुद जाता है, ढूंढता है डॉक्टर को और इलाज एग्जैक्टली वैसे करता है जैसे डॉक्टर बता रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाए, तो सबसे बड़ी दिक्कत डॉक्टर के पास ये है कि व्यक्ति स्वीकार नहीं करना चाहता है कि वो पागल है। इसी प्रकार से हम सब लोग इस मल मूत्र के भरे हुए बैग को स्वयं को शरीर मानते हैं, कि देहात में बुद्धि है और ये पागलपन है। जब ये बात लोगों को समझाई जाती है कि ये पागलपन है, तो गुस्सा हो जाते हैं। सारे लोग तो नहीं, लेकिन बहुत से लोग गुस्सा हो जाते हैं, या फिर कहते हैं ये तो अंधविश्वास है। अब साफ साफ देख रहे हैं कि शरीर का परिवर्तन हो रहा है और मैं इससे अलग हूँ, फिर भी नहीं स्वीकार कर पाते। तो अब ऐसा व्यक्ति जब स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि वो बीमार है, तो फिर दवा क्यों लेगा हरे कृष्ण मंत्र की या भगवद गीता के वचनों को क्यों स्वीकार करेगा। तो हमको इस प्रकार का बीमार व्यक्ति नहीं बनना है, हमको प्रयास करना है भगवान के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए। उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है जो उसने कई कई जन्मों में अर्जित किए हैं। हर जन्म में हम कुछ कार्य करते हैं तो उसका संस्कार हमारी चेतना के ऊपर पड़ता है, इम्प्रेशन जिसे कहा जाता है, और उसके अनुसार हमारा एक स्वभाव बन जाता है, क्षत्रिय का या ब्राह्मण का या वैश्य का या शूद्र का। तो ऐसा नहीं है कि किसी के बोलने से वो तुरंत परिवर्तित हो जाएगा, और इस बात को भगवान भगवद्गीता में बोलते हैं। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। निग्रह किम करिष्यति, दबाने से क्या होगा, अर्जुन को बात बता रहे हैं, और गीता में भी बताते हैं, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः समसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने कर्मों में निरत होकर के रह करके व्यक्ति भगवान को उन कर्मों को समर्पित करता है, तो व्यक्ति समसिद्धि को प्राप्त होता है, भगवत धाम की प्राप्ति करता है। इस बात को भगवान भगवद गीता में भी बोलते हैं कि जो कुछ भी करो, कुछ भी तपस्या करो, कुछ भी दान करो, तो वो मुझको अर्पित करो। तो इस प्रकार से व्यक्ति को अपनी स्थिति परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है। अपने ही घर में रह करके, व्यक्ति घर में अगर रहना चाहता है तो घर में रह करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भगवान के बारे में सुने। श्रील प्रभुपाद इस बारे में समझाते हैं कि कोई व्यक्ति कृष्ण को तभी समझ सकता है जब वो कृष्ण की सेवा करेगा। तो कृष्ण की सेवा तभी करेगा जब वह व्यक्ति भगवान के बारे में, भगवान के प्रति आकृष्ट होगा, आसक्त होगा, और आसक्त तभी होगा जब भगवान की महिमा के बारे में सुनेगा। इसी बात को भगवान गीता में बोलते हैं, मैया सक्त मन अपार्था योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समद्रमाम यथा ज्ञास्यसि तश्नु। किस प्रकार से तुम मुझको जान सकते हो और उसके द्वारा मुझ में आसक्त हो सकते हो, और आसक्ति के कारण मेरी सेवा करके तुम मुझको समझ सकते हो, इसको तुम मुझसे सुनो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है भक्ति में हम भगवान के बारे में अधिक से अधिक सुने। अधिक से अधिक बोलेंगे उसके बाद, और फिर स्वतः भगवान का स्मरण होगा। जितना हम भगवान का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, उतना ही अधिक भगवान के प्रति आसक्ति होती है और उतना ही अधिक भगवान की सेवा करने का उत्साह होता है। और जैसा कि अभी आप देखिए कि अर्जुन भगवान की सेवा नहीं करना चाह रहे थे, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये युद्ध भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो इस कारण से वो नहीं लड़ना चाह रहे थे। लेकिन जब भगवान से सुनते हैं तो कहते हैं, मेरा मोह पूरी तरह से नष्ट हो गया है और अब मैं आपके वचन के अनुसार करने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक भक्त का लक्षण है। मान लीजिए भक्त के हृदय में मोह आ भी जाए, फिर भी गुरु और भगवान से सुन करके उस मोह को त्याग कर भगवान की सेवा में लगना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक। किम नु राज्ये न गोविंद किम भोगेर जीवते न वा ये सामर्थ्ये कांक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च त इमे वस्तिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वसुरः पौत्रा शालः संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुम् न एतान् हन्तुम् इच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतुः किं नु महि कृते निहत्य धार्त राष्ट्रान् का प्रीतिः सा जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता प्राप्त। हरे कृष्णा। तो भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अर्जुन बहुत सारे जितने सगे संबंधी हैं उनको देख रहे हैं और उनकी संबंधों को, उनके प्रेममय बर्ताव को वो याद कर रहे हैं। पिछले समय में जितने भी मामा थे, ससुर थे, पितामह थे, पुत्रगण थे, गुरुजन थे, उन जिन्होंने उन सबने उनके प्रति स्नेह को प्रकट किया था और उस स्नेह रूपी बर्ताव को अर्जुन भूले नहीं हैं। एक महान भक्त का लक्षण होता है या महान व्यक्ति का लक्षण होता है कि उसके प्रति कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है उसको वो कभी नहीं भूलता। इस चीज़ को हम नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हम लोग तो हम पर कितने उपकार किए जाते हैं फिर भी हमें थोड़ा सा भी याद नहीं रहता, लेकिन अर्जुन ऐसे भक्त नहीं हैं। जैसे ध्रुव महाराज जब भगवान के धाम जा रहे थे 36,000 साल के बाद, तो वो सोच रहे थे कि मेरी माँ ने मुझे भगवान के धाम जाने का रास्ता बताया था सुनीति ने, तो अब उनका क्या होगा। तो उनके सोचने मात्र से उनकी माता जो है भगवान के धाम चली गई। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि भगवान के भक्त उनके पर किए गए उपकार को हमेशा याद रखते हैं, कभी नहीं भूलते। तो अर्जुन ऐसे ही भक्त थे, इस कारण से वो बोल रहे हैं कि भले ही आज ये मेरे प्रति युद्ध करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं इनके उपकारों को और फिर मैं इनका वध करने के लिए कैसे उद्यत हो जाऊं, इससे मुझे कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। इस जगत में अगर हम किसी को अपना लीडर मानते हैं या कोई अपना हम देवता मानते हैं, तो देखेंगे सूक्ष्म रूप से हमारी इच्छा यही होती है कि हमारी इंद्रियां कैसे संतुष्ट होंगी। और अगर कोई व्यक्ति हमारी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो उसको देवता या लीडर मानने में हमारी कोई रुचि नहीं होती है। तो इसी धारणा के संग बहुत बार लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करते हैं, और समझ में आना चाहिए कि भगवान इच्छा तो पूर्ण करने में सक्षम हैं, लेकिन भगवान स्वराट हैं, भगवान बाध्य नहीं है हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। अगर उन इच्छाओं से हमारा हानि होगी तो भगवान की इच्छा भगवान उसको पूर्ण नहीं भी करेंगे, या फिर इस प्रकार से पूर्ण करेंगे कि हमको और भौतिक इच्छा न रहे। तो इसीलिए लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते, वो भौतिक आसक्ति से, भौतिक जहर से आसक्त हैं, जहर पीते रहना चाहते हैं। अब कोई व्यक्ति आपके पास आए और बोले, भाई साहब क्या आप मुझे थोड़ा जहर दे सकते हैं? तो अगर कोई व्यक्ति विवेकशील होगा तो कहेगा, नहीं मैं नहीं दे सकता। लेकिन आप देख सकते हैं पूरे समाज में सिगरेट बेचने वाले और ये शराब बेचने वाले और ये मसाला बेचने वाले जहर ही तो बेच रहे हैं, और लोग पैसे दे देकर के उनसे खरीद रहे हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करता है वो। तो भगवान से हमारा संबंध इस प्रकार का नहीं है कि हम भगवान हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करें, अपितु हम जब भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं तो अपने आप हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं। ये एक सच्चे भक्त का लक्षण है कि वो उन कार्यों को करता है जिससे भगवान प्रसन्न हो। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो। तो मनमना शब्द का एक अर्थ ये भी है कि जो कृष्ण का मन है उसके अनुसार भक्त चले। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम मेरे मन की बात करोगे क्या, तो इसका अर्थ ये है कि हम उनके मन को प्रसन्न करने वाले कार्य को करें। तो भगवान किन कार्यों से प्रसन्न होते हैं? जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनको सुनकर स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार के कार्यों को करने से भगवान संतुष्ट होते हैं, और भगवान की संतुष्टि से हम स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं। इस बात को भगवान विष्णु बोलते हैं पृथु महाराज को 34 स्कंद में, कि जब कोई व्यक्ति निष्काम भावना से भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए कार्य करता है तो काल में, यानी कि समय बीतते बीतते, वो अपने हृदय में बहुत अधिक संतुष्टि का अनुभव करता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेगा किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं। अगर भौतिक लाभ के लिए कर रहा है तो भी बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अगर और अधिक बुद्धिमान है तो भगवान से भौतिक लाभ के लिए उनकी उनको अप्रोच नहीं करेगा। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने की वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसकी विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों को संतुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। थोड़ा इस बात को समझिए, वो क्या रहा है? जब कोई जीवात्मा भोग करना चाहता है तो भगवान परमात्मा के हृदय में उसके लिए भोग उपलब्ध करवाते हैं पूर्वगत किए गए कर्मों के अनुसार। लेकिन जब कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, भगवान को संतुष्ट करना चाहता है, वो भगवान से ना भी मांगे, भगवान उसके हृदय की इच्छा को जानते हैं, अपने आप ही भगवान उसके सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे और अपनी कृपा के अनुसार देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को कल्पना भी नहीं थी कि ब्रह्मा से अधिक या राज्य का क्या मतलब होता है, फिर भी भगवान ने इस जगत में उनको राजा बनाया, और अभी भी वैकुंठ जगत में जो ध्रुव लोक है वो वैकुंठ के समान ही है, वहाँ पे भी वो बहुत बड़े राजा हैं और वो कोटि कोटि अरबों खरबों समय तक वो रहेगा। तो ये चीज ध्रुव महाराज के चित्त में आई भी नहीं थी कि इतना बड़ा आशीर्वाद भगवान देंगे। तो भगवान के प्रति जब कोई भक्ति करता है तो उसको जो आशीर्वाद मिलते हैं वो भगवत कृपा से मिलते हैं, ना कि उसको पूर्व अपने किए गए कर्मों के अनुसार। भगवान परमात्मा के रूप में न्याय करते हैं, लेकिन भगवान के रूप में जब उनकी सेवा करते हैं तो हम पर कृपा करते हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। तो यहाँ बार बार भगवान तो बीच में आई नहीं कि भगवान कहाँ संतुष्ट होंगे। सारी बात ये आ रही कि मैं कैसे संतुष्ट होऊंगा और मेरे परिवार कैसे संतुष्ट होगा, और परिवार मर जाएगा तो मेरी इंद्रियां की तुष्टि कैसे होगी। तो ये एक बद्धात्मा का लक्षण है। ध्यान दीजिएगा कि अर्जुन के अंदर ये जो मोह है, जो कि बद्धात्माओं में पाया जाता है, ये भगवत इच्छा से उत्पन्न हुआ है। अदरवाइज अर्जुन के हृदय में कोई इस प्रकार की इच्छा आना संभव नहीं है। भौतिक जीवन का यह सामान्य देखा जोखा है, मतलब अपने लिए सोचना या शरीर से संबंधित वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में सोचना, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। जैसे आप देखिए, सुदामा भगवान की इच्छा से बड़ गरीबी में रह रहे थे, और जब भगवान ने उनको बहुत बड़ा ऐश्वर्य दिया तब भी इसी भावना में रह रहे थे कि भगवान की कृपा है, भगवान ने मुझे ऐश्वर्य दिया है, उन सबका वो समर्पण भगवान को कर रहे थे। ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज भगवत इच्छा से जंगल में रहे 13 साल तक, और उसके बाद भगवत इच्छा से उनको बहुत बड़ा राज्य मिला राज्य करने के लिए, और ये समझते हुए कि भगवान चाहते हैं मैं राज्य करूं, तो उन्हें राज्य किया, बहुत सुंदर तरीके से राज्य किया, भगवान की इच्छा के अनुसार राज्य किया, सबको भक्ति में लगाया। लेकिन जब भगवान चले गए भगवान के धाम, तो फिर उन्होंने तुरंत उस राज्य को त्याग दिया। तो भक्त की आसक्ति, सच्चे भक्त की आसक्ति कृष्ण में ही होती है, इस जगत में नहीं होती। यहाँ हम देख रहे हैं अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्धभूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं, और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला आज से 5,000 साल पहले चल रही थी, तो उस समय उपस्थित लोग, चाहे वो असुर हों, चाहे वो देवता हों, चाहे कोई भी हों, वो बिल्कुल उनको पता नहीं चल रहा था कि भगवान की लीला चल रही है। जैसे अर्जुन को इस समय नहीं लग रहा है, ये कभी भी नहीं लगा कि वो लीला में भाग ले रहे हैं। तो और ये एक लीला मतलब भगवान का एक स्पेशल प्लान है, ये युद्ध क्यों हो रहा है वो समझ नहीं पा रहे थे। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो सो साक्षात कृष्ण हैं, उनकी भी एक इच्छा है, उनका एक प्लान है कि इस पूरे जगत में हरि नाम का प्रचार हो। होगा, हो नहीं होगा, और ये हमें विश्वास करना चाहिए कि उनकी इच्छा है तो पहले से ही प्रचार हो चुका है। हमें तो केवल जाकर के हाथ छूना है, जैसे कहना चाहिए हाथ लगाना है, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जहाँ भी हरे कृष्ण मंत्र होता है लोग आकर्षित होते हैं, और हरे कृष्ण मंत्र के हरे कृष्ण जीवन को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। तो जो भक्त प्रचार करते हैं उनको फ्रूटी मेंटालिटी, मैंने कि इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए मैं प्रचार करने जा रहा हूँ कोई भक्त बनेगा या नहीं बनेगा, इसके बारे में नहीं, अपना कर्तव्य करना चाहिए। लोगों को भगवान के बारे में जैसा भगवान ने बताया वैसे बताना चाहिए, और कुछ ना कुछ लोग निश्चित रूप से आकर्षित होंगे इस कृष्ण भावना के आंदोलन के प्रति, जिनको भगवान स्वयं ही लेके आएंगे हमारे पास में। इसलिए हमें केवल निमित्त बनना है। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्ट से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। द्रौपदी को अपमान करने के कारण उसी समय सारे राजाओं की जो आयु थी वो घट गई थी। तो भगवान इस सत्य को दिखाना चाहते हैं कि एक भक्त के प्रति अपराध करने के कारण, और ये पांडवों के प्रति भी जिन्होंने छल किया था अपराध करने के कारण, इन लोगों को दंड मिलना अवश्यंभावी था, और अर्जुन अगर वापस भी चले जाते तो भी भगवान के अरेंजमेंट से युद्ध होता और ये मारे जाते। उसी प्रकार से हम लोग सोचें कि हम प्रचार नहीं करेंगे, हम तो प्रचार नहीं कर सकते, तो आप सोचते रहिए, ऐसा हम लोग सोचते रह सकते हैं, और फिर भी महाप्रभु का जो आंदोलन है उसका प्रचार पूरे विश्व में होगा। लेकिन जो लोग इस आंदोलन में भाग लेंगे उन पे महाप्रभु की अतिशय कृपा, महती कृपा होगी, प्रभुपाद की कृपा होगी। इसलिए भगवान उन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। तो ये भक्त का स्वभाव होता है, जैसे हमने देखा हरिदास ठाकुर जी, उनपे 22 बाजारों में उनको मारा गया, और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, उनका चक्र आया था उनको बचाने के लिए और उन मुसलमानों को मारने के लिए, फिर भी हरिदास ठाकुर कह रहे थे भगवान इनको क्षमा कर दें, इनको पता नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर आप देखें तो इस भाव को अर्जुन भी यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं कि ठीक है ये मेरे स्वजन हैं और अज्ञानवश वो राज के लोलुप हो गए हैं, मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उन्हें क्षमा ना करूं। लेकिन भगवान इस बात को स्वीकार नहीं करते। तो आप देखेंगे इसके दो पहलू हैं, एक भक्त का अपराध करने से भगवान क्षमा नहीं करते, अगर हम भक्त की सेवा करते हैं तो भगवान कभी उसको भूलते नहीं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं ही इस्कॉन हूँ, इस्कॉन एक बड़ी संस्था है, इस संस्था का जो कह सकते हैं एक मैनेजमेंट है या सेटअप है, प्रभुपाद कहते हैं ये मेरा शरीर है। तो प्रभुपाद की वपु सेवा करने का मौका हम लोगों को नहीं मिला है, लेकिन इस्कॉन की सेवा के माध्यम से हम श्रील प्रभुपाद की सेवा करते हैं, तो इसके द्वारा हम भगवान का बड़ा बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, भगवान के धाम की प्राप्ति करेंगे। तो व्यक्ति को इस प्रचार संस्था में जुड़ना चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करना चाहिए अपने को निमित्त मात्र मानते हुए। इसके द्वारा महाप्रभु का और प्रभुपाद जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर होगा। हरे कृष्णा।